ओम शांति। जनवरी हमेशा बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ होता है साल में। यह व्यक्ति मास है और तीनों कॉम्प्लेक्स में आप सुन भी रहे होंगे कि कैसे योग पठिया भी चल रही है। वैसे तो सारे देश विदेश में योग पट्टी रखी जाती है, खास करके तो ये पट्टी रखते हैं तो कितना हम देखते हैं कि दुनिया में भी किस चीज की जरूरत है। हम दुनिया की हालत भी देख रहे हैं कि कितना लोग तड़फते हैं मन की शांति के लिए। तो यही सब जगह ये लहर चल रही है कि जितना हो सके हम शांति का दान देवे, लेकिन उसके लिए भी अगर हमारे अंदर है शांति का स्टॉक तो फिर हम वो चीज दान कर सकते हैं। हमको याद है जब अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि दादी जान की नंबर वन है गुण दान करने में, तो उनमें इतना जमा होता तो फिर वो दान करती थी। तो हम भी यहाँ जो पट्टी में आते हैं तो हम भी अपना स्टॉक इतना भरपूर करें कि जो भी जिसको वो चीज की जरूरत है तो हम दे सकते हैं। भट्टी इसलिए रखी जाती है कि यही समय है जो हम सब अपने कारोबार से भी फ्री रहते हैं, चाहे लौकिक घर में सेंटर पर जहां भी हम होते हैं हमारा माइंड एक फ्री रहता है। तो ये समय है जो हम बैठ के इस भट्टी में बैठ के अपन को देखें, अपने अंदर गुफा में जाएं और देखें कि कौन सी चीज है जो हमको अंदर परिवर्तन लाना है, कौन सी चीज है जो हमको वो चीज निकालनी है। तो उससे भी हमको पता चलता है कि किस चीज की कमी है और किस चीज को हमको अपने अंदर भरना है। उसमें भी थोड़ा भी जो बाबा ने नियम मर्यादाएं दिया है उसको पूरी रीति से हमको फॉलो करना है। उसमें कोई भी एक अंश मात्र भी, जैसे दादी भी हमको सिखाती थी, कोई भी चीज मिस ना होए। इसमें ना सुस्ती आए ना अलबेलापन हो, क्योंकि समय ऐसा है, कभी दिन में ऐसा होता है जो हमको नींद भी आती है, तो कैसे हम अपने आप को तुरंत फ्रेश करें। कौन सी चीज है जो हमारे में हम अंदर भर नहीं सकते, कहाँ कहाँ हमारे में लीकेज होती है, तो ये भी दादी बहुत ध्यान खिंचवाती थी। जैसे कि हमारे कान है, हमारी आंखें हैं, हमारे नाक है, हमारे मुख है, ये जो चीजें हैं जो सारा हम योग में बैठ के हम एक तरफ लेते भी है, दूसरी तरफ जैसे ही हम योग से उठ के खड़े होते हैं बाहर जाते हैं तो धीरे धीरे इन चीजों से लीकेज होना शुरू करते हैं। दादी हमारे कर्म पर बहुत ही ध्यान खिंचवाती थी। हम अगर आवाज से बोलते थे तो दादी कहती थी कि ये कोई देवी संस्कार नहीं है, अगर हम चलने में थोड़ा भी हमारे चप्पल से आवाज होता था तो दादी ध्यान खिंचवाती थी कि ये देवी गुण नहीं है, देवता कैसे चलते हैं, हमको भी ऐसे चलना है जैसे फरिश्ता चलते हैं। हम चलते हैं तो किसी को कैसे पता चलते कि ये व्यक्ति आ रहा है या जा रहा है, कभी उनके चप्पल से मालूम पड़ जाता था, या सीढ़ी भी उतरते या चढ़ते तो लोग को पता चलता है ये व्यक्ति आ रहा है या जा रहा है। तो वो भी आवाज सुनने में नहीं आए। तो धीरे धीरे सब चीजें अगर हम बैठ के देखें अपने आप को कि ये चीजें हैं, कभी कभी तो हमको पता भी नहीं चलता है, हम ऐसे बाहर मुक्ता में आ जाते हैं इन चीजों से कि हमको पता भी नहीं चलता है कि इन चीजों से हमारा व्यर्थ जा रहा है। जैसे हम किसी से बात भी करते हैं तो बाजू में ही खड़ा रहता है, लेकिन हम जोर जोर से बोलते हैं, तो इस पे भी दादी ध्यान खिंचवाती थी कि ऐसे लग रहा है कि आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो कितनी छोटी छोटी बातों पर जैसे दादी ने ब्रह्मा बाबा को पूरी रीति से फॉलो किया, ब्रह्मा बाबा क्या थे, उनकी त्याग कैसा था, उनकी तपस्या कैसी थी, उनकी सेवाएं कैसी थी, तो हमने ब्रह्मा बाबा को तो नहीं देखा लेकिन दादी को देखा। दादी ने पूरी रीति से ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया, जैसे थे ब्रह्मा बाबा, दादी कैसे कहती थी क्या था मेरा बाबा। और लास्ट समय भी आप सभी ने सुना कैसे उनके अंदर बाबा के सिवाय दिल दिमाग में और कुछ भी नहीं था। घड़ी घड़ी हमको वो मंत्र याद कराती थी, मैं कौन मेरा कौन, जो सभी सुन रहे थे, क्योंकि यही हमारा पहला लेसन है और यही हमारा लास्ट, जब हम श्वास छूटेगा तो वही हमारा लास्ट लेसन रहेगा। तो दादी के हर कर्तव्य से हम देखते थे कि कैसे उसने पूरी रीति से बाबा को फॉलो किया। हम देखते थे कि दादी जब किसी से बैठते भी थे तो एकदम जैसे पहले उनको साइलेंस में लेके जाते थे, ऐसे नहीं कि हम जैसे ऑर्डिनरी बैठते हैं, हम आपस में बैठते ही बात करना शुरू करते हैं। दादी पहले उनको शांत में लेके जाती थी, वो शांति की गहराई में लेके जाती थी, उनको बाबा की फीलिंग देती थी। लोग कहते थे कि हमको एक मिनट दृष्टि दिला दो ना दादी से, एक मिनट मिला दो ना दादी से। क्यों कहते थे? क्योंकि उनमें एकदम बाबा के साथ वो इतना गहरा कनेक्शन था कि दिल दिमाग में और कुछ भी नहीं था, तो बैठते ही वो बाबा की फीलिंग आती थी, वो चलती भी थी तो वो वाइब्रेशन उनसे आता था, जैसे कोई ऑर्डिनरी मनुष्य नहीं थे। तो हम भी अभी भी मैं सोच रही हूँ कि इस भट्टी में हम क्या करें कि हम पूरी रीति से उनको फॉलो करें। तो हम भी इतने ही हमारे में शक्ति जमा करें कि हम किसी के आगे भी आए तो उनको ये फील ना होए कि ये साधारण व्यक्ति है। दादी ऐसे अनुभव कराते थे, ऐसे स्पिरिचुअल खुशबू आती थी उनसे, कोई भी व्यक्ति उनके आगे जाते थे तो अनुभव लेकर जाते थे। आज भी हम देखते हैं कितना सभी के दिल को टच किया, सभी उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि वो बाप समान बन गए थे, संपूर्ण अवस्था प्राप्त किया उन्होंने। तो आज हमको भी ये मौका मीन्स सदा के लिए हमको यहाँ से ही प्रैक्टिस करके जाना है कि चलते फिरते बोलते खाते पीते हमारे दिल दिमाग में और कुछ ना रहे बाबा के सिवाय, क्योंकि यही चीज हमको सिखाई गई है सुबह अमृत वेले से ही, कैसे हमारा वो फाउंडेशन हम पक्का करें। ऐसे नहीं कि ठंडी का समय है तो थोड़ी सुस्ती आए तो हम सो गए, क्योंकि दादी कहती थी कि कोई भी एक चीज मिस किया तो कलप कलप वो मिस हो जाएगा, वो समय वापस नहीं आएगा। तो यही समय है जो हमको रियलाइज करने का। मुरली में भी हम जाते हैं, मुरली सुनते हैं तो देख कैसे ध्यान खिंचवाते थे कि उस समय भी हमारा अटेंशन कहाँ भी नहीं जाना चाहिए, हम पूरा हमारा अटेंशन बाबा जो सुना रहे हैं। क्योंकि दादी कहती थी कि वो तो एक एक जूल है, कितनी कीमती चीज है, हमारा समय भी कीमती है, बाबा के महावाक्य भी कीमती है, तो कितनी वैल्यू हमको उसकी करनी चाहिए। तो कोई भी चीज जो हम सुन रहे हैं, बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, उसकी वैल्यू अगर हम करेंगे तो बहुत ही हम सारा दिन उसको याद हमारे अंदर रहेगा कि यही बाबा जो कह रहा है हमको करना है। दादी आज दादी कैसे बनी, क्योंकि जो भी महावाक्य बाबा सुनाते थे तो एक एक चीज वो अमल में लाते थे। दादी के हमेशा रहता था कि मैं बहुत देरी से आई तो मैं क्या पुरुषार्थ करूं कि मैं सबसे आगे चली जाऊं। तो दादी ने यही किया कि जो भी बाबा के महावाक्य थे वो एक एक महावाक्य को वो उसका स्वरूप बनती थी। तो अगर हम भी क्लास में बैठते थे इधर उधर देखते थे तो दादी भर सभा में नाम लेके कहते थे, आप कहाँ देख रहे हो, आप कहाँ, आप क्यों झुटका खा रहे हो। कईयों को खराब भी लगता था लेकिन फिर हम देखते थे कि हमारी भलाई के लिए कह रही है, सचमुच हमारा क्या जाता है, कौन लेट आया, कौन जा रहा है, कौन अंदर आ रहा है। तो पूरा फोकस उस समय हमारा ध्यान बाबा के महावाक्य के ऊपर हो। दूसरा कि कोई भी झुटका खाए तो उसके ऊपर भी दादी कहती थी कि फ्रेश होके आओ, क्योंकि अगर हम एक झुटका खाएंगे तो वो उसका वाइब्रेशन अनेक आत्माओं को पहुंचेगा। तो जैसे हम ही वो वाइब्रेशंस जहां भी हम बैठे हैं, क्योंकि हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, कोई उबासी खाता है तो दूसरे वाला भी उबासी खाना शुरू करता है, या कहां भी आसपास लोगों को वो भी, इट्स जैसे चेपी रोग है। तो ऐसे ही हम अगर नींद आती है तो अपने आप को फ्रेश होके आके बैठना है। तो इतना अटेंशन, इतना अलर्टनेस है हमको सुनना है, योग में ध्यान में बैठना है, क्योंकि एक एक घड़ी हमको देखना है। दो दिन मिला है हमको यहाँ पर तो उसका पूरा पूरा हमको यहाँ से प्राप्ति करके जाए। सब यहाँ आए हैं उतना समय नहीं, लेकिन जहाँ भी हम जाएंगे लोग फील करें कि नहीं इसमें तो कुछ परिवर्तन है, सभी देखेंगे लेकिन खुद को भी अनुभव होगा कि नहीं सचमुच हमारे में ये थोड़ा बहुत चेंज आया है। वही लक्ष्य अगर हम सामने रखते हैं, अभी हम भी देखते हैं कि दादी नहीं है तो फिर हमारा सोच चल रहा था कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। फिर हमने सोचा कि हम जितना हम अपने माइंड को ढीला रखेंगे, वीक रखेंगे, तो वो हमको ओवरपावर करेगा। तो हमको अपने जो कर्म इंद्रिया है, जो हमारे सेंसेस है, हमको उसको कंट्रोल में रखना है। लेकिन हम तब कंट्रोल में रख सकते हैं जब हम योग में, पावरफुल योग में बैठ के उसको वाइब्रेशंस देवे, क्योंकि सारे हमारे जो कर्म इंद्रिया है, चंचल तो कहाँ न कहाँ होते हैं। तो बाबा ने भी कहा कि रात्रि को अपना चार्ट को देखना है, अपनी दरबार लगाओ कि हे मन, आप कहाँ भागता है सारा दिन में। तो कोई भी कर्म इंद्रिया है, उसकी दरबार लगाना है, उसको हम अटेंशन देवे, उसको पूरा पूरा उसके ऊपर फोकस करे कि हमको इस चीज को है, इसको हमको ढीला नहीं छोड़ना है। तो आज ये समय है जो अपने ऊपर पूरा फोकस करके, जैसे हम स्ट्रांग अवस्था बनाने चाहते हैं ऐसे बना सकते हैं, वो सब हमारे ऊपर है। क्योंकि जो हम करेंगे अपने अपने लिए करेंगे, उसमें जमा होता जा रहा है। तो ऐसा कोई कर्म हमारे से न हो जाए, उसमें घाटा पड़ जाए। क्योंकि एक तरफ हम जमा करते हैं, दूसरे तरफ थोड़ा भी हम कुछ बोल दिया, कह दिया, या कुछ सुन लिया, या अपसेट हो गए, तो उसमें भी घाटा पड़ता जाता है। तो हम प्लस माइनस का भी हमको ही देखना है कि कहाँ तक हम हमारे में जमा हुआ है। ये समय दिया है बाबा ने तपस्या करने का। 14 साल तो दादियों ने तपस्या किया, लेकिन सब कह रहे हैं कि हमको वो समय तो नहीं मिला। लेकिन 14 दिन क्या बाबा इतनी ही ताकत और शक्ति देंगे कि 4 दिन में हम पूरा पूरा अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे कि हम एक एक घड़ी सफल करना है। यहाँ आए हैं वही तो लक्ष्य लेके आए हैं कि अपन में परिवर्तन लाना है, अपने में परिवर्तन करना है। हम अपने में परिवर्तन करेंगे, अपने में जमा करेंगे, तो हम दूसरों को दे सकते हैं। तो यही समय है जो हमको जितना हो सके साइलेंस में ही रहना है। बाहर मुक्ता तो बहुत नुकसानकार है, हम बोल देंगे कुछ या हम सुन लेते हैं तो अपसेट हो जाते हैं, तो ये नहीं करना है। जितना हो सके हम साइलेंस में रहे, तो ये भी नहीं कि हमारा मुख साइलेंस में है और मन भागता रहे। जितना हो सके हमारा माइंड को भी साइलेंस में रखना है, तभी तो शक्ति हम भर सकेंगे। अगर हमारा मन साइलेंस नहीं होगा तो हम शक्ति कहाँ से भरेंगे। बाबा कहता है कि योग बल चाहिए, तो योग से ही हमारा योग बल हम जमा कर सकते हैं। याद की यात्रा में रहना है, चलते फिरते बाबा की ही याद रहे। ये नहीं कि हम सारा दिन हम वापस जाएंगे तो 8 घंटा ही योग में बैठे और फिर हम कुछ काम नहीं करें, तो फिर आसपास जो भी है हमारे साथ रहने वाले नाराज हो जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, एक की याद हो। दादी का एक ही मंत्र था, एक बल एक भरोसा। उसके आधार से ही यहाँ तक पहुँच के अपना संपूर्ण अवस्था प्राप्त करके दादी चली गई। तो हम भी इतना अपने अंदर ताकत भरे, जमा करे कि बाबा के सिवाय और कुछ भी दिखाई न दे। क्योंकि चलते चलते बहुत सारी सीन्स आगे पीछे आएंगी ही। अभी भी हम कई चीजें देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन हम उसको अंदर क्यों लेवे। कई बार हम दादी को कहते थे, दादी हमारा बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहा है किसी के प्रति भी। तो दादी कहती थी, क्या आपको घोड़े सवार नहीं बनना है, आप तो महारथी हो ना, हाथी कैसा चलता है, आपको हाथी की चाल चलनी है। हाथी कैसे चलता है? वो धीरे धीरे अपनी सूंड हिला के चलता है ताकि कोई भी चीज उसके आसपास आवे वो उड़ा सके, चला जाए। उसकी सूंड ही ऐसी है कि कोई उसके नजदीक नहीं आता है। तो हमको भी हाथी की चल चलना है कि हम सुनते हुए देखते हुए हमको टच ना करे। उसको ही कहते हैं हाथी की चाल। महारथी बनना है, हम घोड़े सवार नहीं है। घोड़े सवार जो नेगेटिव सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, तो ये सब बातें ना होए। हम महारथी बनना है, वही बन के हमको आगे हमारी ऊंची स्टेज प्राप्त करनी है। हम दादी को कभी कहते थे, हम दादी को दे प्रैक्टिकल एक चीज में देखा जो हमको मालूम नहीं था। सुनते थे कि विदेही अवस्था, विदेही अवस्था क्या होती है, तो वो प्रैक्टिकल दादी के जीवन से देखी। एक दिन दादी को बहुत ही एलर्जी हो गई थी, उसका जो फेस है वो बहुत जैसे सूज गया था, यहाँ जैसे हनुमान का फेस होता है ना, बहुत ही सूज गया। आपने देखा होंगे कईयों ने, जैसे ये सारा हनुमान फेस जैसा हो गया था कुछ एलर्जी से। तो उस समय राखी का समय चल रहा था, तो ये हो गया था। तो दादी तो हमेशा राखी में बैठती थी, ये लंदन की बात है 20 साल पहले की। तो दादी घंटे घंटे बैठ के राखी बांधती थी सभी को, दादी खुद राखी बांधती थी। यहाँ की सिस्टम है जो राखी हाथ में पकड़ा देते हैं, फिर कोई और बहन बांधती है, लेकिन वहां दादी खुद बैठ के तिलक भी लगाते थे और राखी भी बांधते थे, और फिर जयंती बहन या सुदेश बहन टोली और फल देते थे। राखी का समय था तो दादी को ये एलर्जी हो गई। कितना भी समझाया, दादी आप नहीं बैठो, अब क्यों बैठते हो, सुदेश बहन जयंती बहन है वो राखी बांध लेंगे। लेकिन दादी को एक अंश मात्र भी उसको ख्याल नहीं आया कि मेरे को ये हुआ है, मैं कैसे बैठूं। बिल्कुल उसकी बॉडीलेस स्टेज थी उस समय। दादी ने कहा आप ख्याल नहीं करो, मैं बैठूंगी, सबको बांधूंगी। उसमें तो 1500-500 लोग आते थे। तो दादी जैसे ही स्टेज पर आई, सारी सभा बैठी थी, सबको पहले शौक तो लगा कि दादी ऐसे कंडीशन में राखी बांधेंगी। फिर तो दादी ने ऐसे सबको ऐसे ही, जैसे अव्यक्त बाप दादा आते हैं, तो दादी इतनी विदेही स्थिति में बैठ के इसके सभी को संकल्प ही बंद हो गया कि दादी को ऐसे हुआ है। सब ऐसे पावरफुल योग में बैठे थे, कितने घंटे तक दादी बैठ के राखी बांधी, और सबको ऐसे ही लगा कि उस समय सचमुच बाबा ही सामने थे। सभी, किसी को ये फेस दिखाई नहीं दिया कि ऐसा दादी का चेहरा है। तो वो एक घड़ी है जो हम उन्हें, वो और तो बहुत है, लेकिन ये कहानी आपको सुनाई विदेही स्थिति की। क्या है विदेही स्थिति? ओम शांति।
ओम शांति। सबको क्या अनुभव हुआ सुन करके? दादी सामने हाजिर हो गई, राइट? ऐसे ही लगा ना, जैसे वो नजारा हमारे सामने अभी गुजर रहा है, ये ऐसा अनुभव किया ना। इससे क्या होता है, आत्मा में शक्ति भरती है। हंसा बेन ने जो अनुभव सुनाया, दादी का अनुभव सुनते ही आत्मा में शक्ति भर जाए, वो छाप लग जाए, वो हमेशा याद रहे, उसको जीवन में आप यूज करो। तो पहली बात, बाबा हमको इतना खजाना देते हैं और एक एक खजाना, दादी हमेशा ऐसे से उंगली चलती थी दादी की, हम पूछते थे दादी आप ऐसे क्या गिनती करते हो, हाँ मुरली सुना के भी जब योग में बैठते थे ना ऐसे गिनती करती थी दादी, पांचवी उंगली, दस उंगली। दादी ने कहा कि आज बाबा ने कितनी बातें मुरली में बताई, नोट कितनी बातें मैंने किया, तो दादी से गिनती करती है। तो इसी तरह से हम बाबा के बच्चे जब हम मुरली सुनते हैं, क्लास सुनते हैं या किसी का अनुभव भी सुनते हैं, अभी भी जो हंसा बेन ने सुनाया, तो आपने इन बातों को अपने यहां नोट किया होगा। एक एक बात जब हम नोट करते हैं, उसके ऊपर हम विचार करते हैं, फिर वो बात हमारी बन जाती है। अभी तो इनकी है राइट, पर आपने वो बात पर विचार किया, नोट करने के बाद वो बात अपनी बन गई। तो इसी तरह से हम अपने को भरते जाते हैं। तो जैसे हंसाबेन ने गुणदान का दादी का सुनाया, बाबा ने कहा था बाप दादा ने गुणदान करने वाली हो, ये वरदान बाबा ने दिया था। तो प्रैक्टिकली हमने भी, मैं भी दादी के साथ रही हूं शुरू से ही लंदन में, और हंसाबेन का पार्ट दादी के साथ 37 इयर्स, कितनी अच्छी सेवा मिली दादी को, इतना दिल से जान से, समय का सीमा भी न देखते हुए अच्छी तरह से संभाला, ऐसा संभाला कि 10 साल दादी की आयु बढ़ गई। तो सब दुआएं जो हैं, मैं हंसा को कहती हूं आपको बहुत दुआओं का खजाना है, आपको निश्चिंत रहना है। दादी हमेशा कहती थी, एक एक बात दादी की अपनी अनुभव की है, तो मैं आपको अनुभव की बात सुना रही हूं, तो आप सुनकर के उसको अपना बना लो तो आपका खजाना हो जाएगा, तो फिर आप औरों को क्या करेंगे, देंगे राइट, दे सकेंगे, पर पहले अपना बनाना पड़ेगा। दादी हम लोगों को कहती थी, छोटे ग्रुप थे ना तभी उन दिनों में, सेवाएं तो शुरू हुई थी लंदन में, तो हम शुरू से दादी के साथ 78 से मैं दादी के पास हूं। तो दादी कहती है जब हम बाबा से दृष्टि लेते हैं तो आपको क्या अनुभव होता है, एक एक बात दादी जो है ना वो एनालाइज करती थी। उस दिन बाबा ने कहा दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस, तो दादी का हमेशा ये बैलेंस्ड, हर बात में बैलेंस होता था। तो जब हम बाबा से दृष्टि ले रहे हैं तो क्या अनुभव होता है, तो सब अपना अपना जवाब दिया। फिर दादी ने अपना क्लेरिफाई किया कि जब हम बाबा को देखते हैं, बाबा से दृष्टि लेते हैं, तो दृष्टि से हमको एक तो बाबा के स्नेह का अनुभव होता है प्यार का अनुभव होता है कि बाबा आपको देखते ही रहे। दूसरा, हम बाबा से जब दृष्टि लेते हैं तो ये भी अनुभव होता है बाबा हमको इशारा दे रहा है, होता है अनुभव बाबा कुछ इशारा दे रहा है, वो इशारा कैच करने के लिए समझ चाहिए। और तीसरी बात, जब बाबा को हम देखते हैं बाबा की दृष्टि से, ऐसे लगता है बाबा मुझे दुआ दे रहा है। तो दादी ने कहा कि जब बाबा स्नेह देता है, स्नेह का अनुभव होता है, कभी होता है जब मेरा दिल सच्चा है, सच्चाई है। दूसरा, जब मेरे को बाबा इशारा दे रहा है, मैं इशारा कैच कर रही हूं, उस वक्त समझ, मैं आत्मा समझ रही हूं अभी, तो मेरी समझ जो है, बुद्धि के अंदर समझ है, वो समझ जैसे काम कर रही है, अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रही हूं। और तीसरा, बाबा से हमको दुआएं मिल रही है। किसको दुआएं मिलती है? जो अच्छा करता है, तो वो भी आपको अनुभव करना चाहिए। आपने अच्छा काम किया तो बाबा आपको दुआ करेगा। तो दुआ भी चाहिए, इशारा भी चाहिए और स्नेह भी चाहिए, तीन चाहिए। तो इसी तरह से हमेशा दादी हम सबका एक एक बात पर ध्यान खिंचवाती थी कि हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, तो ब्राह्मण में भी नंबर वन ब्राह्मण बनना है। फिर दादी कहती है चार प्रकार के लौकिक ब्राह्मण है, वो मैं डिफाइन नहीं करती हूं, आपको पता है, परंतु हम कौन से ब्राह्मण है? हम सब कहेंगे हम ब्राह्मण है, राइट? सब है ना ब्राह्मण, पर हम कौन से ब्राह्मण है? जैसे अंसाबेन ने बताया, दादी एक एक बात पर ध्यान खिंचवाती थी। दादी हमेशा कहती थी उसी वक्त अच्छा लगता था कि दादी कहती है, अगर दादी नहीं कहेगी तो कौन कहेगा? दादी का हमारे ऊपर हक है, तभी दादी कहती है। कोई ना कोई बात पर जरूर दादी ध्यान खिंचवाएगी। तो जब हम बाबा के सामने आते हैं, समझो अमृत वेले हम बाबा के सामने बैठते हैं, तो उस वक्त हमको क्या अनुभव होता है? दादी पूछती थी आज क्या अनुभव रहा। अगर हम अलर्ट बाबा के सामने बैठे हैं और बाबा से हम दृष्टि ले रहे हैं, तो जरूर ब्राह्मण बाबा के बच्चे, जो बाबा के रियल ब्राह्मण बच्चे ना, उनको अनुभव जरूर होगा। बाबा हमारे से क्या चाहता है, बाबा मेरे से क्या चाहता है, वो खुद को फीलिंग आना चाहिए। तो हमको इतना रेडी, एवर रेडी रहना है। तो ब्राह्मण भी नंबर वन बनना है। ऐसा ब्राह्मण अगर हम बनते हैं तो बहुत सहलाई से हम फरिश्ता बन सकते हैं, फरिश्ता सो देवता। हाँ, तो अभी जो समय है, जमाना, और दूसरी तीसरी बात मैं बताती हूँ, दादी हमेशा समय के अनुसार चलती थी। जब दादी भारत में थी तो दादी कैसे चलती थी, बताती है दादी, क्लास में बताती है। कोई भी बात दादी की छिपी नहीं रहती, हर बात, जैसे ये परिवार है, मेरा परिवार है। फिर दादी विदेश में आई, दादी ने देखा मेरे सामने कैसे बाबा के बच्चे आ रहे हैं, उस अनुसार दादी अपने को मोल्ड करती थी, अपने को मोल्ड किया, चेंज किया दादी ने, अपनी लैंग्वेज, अपना, जैसे हर बात दादी ने चेंज किया। दादी जो इशारा देती थी वो भी धीरे धीरे दादी ने वो भी उसका रूप रंग चेंज कर दिया। कैसे कैसे लोग आते हैं दादी के सामने, क्या उनको कहना है, बाबा का भी ज्ञान क्या सुनाना है, वो भी दादी का इस प्रकार से सब समय के अनुसार चेंज होता गया। तो मैं आपको ये क्यों सुना रही हूं कि अभी कौन सा समय चल रहा है। दादी हम लोगों को हर साल जब मधुबन से हम लोग आते थे, हर सीजन में दादी भी यहां होती थी, फिर वहां आती थी, फिर दादी कहती अच्छा अभी इस सीजन की क्या लहर है, हम सबको पूछती थी, तो सब अपना अपना जवाब देते थे। फिर दादी बताती थी अभी ये लहर है ब्राह्मणों के लिए। समझो कभी कभी बाबा ने मुरली पूरा सीजन में चलाई, साधारणता को खत्म करो, आपको याद होगा जो पुराने है। फिर बाबा ने लहर मुरली की चली व्यर्थ खत्म, राइट? फिर बाबा की मुरलियां चली समय अचानक, या अचानक का भी पाठ चला, वो भी जैसे फिर दादी वो रिवाइज कराती थी कि अभी ये समय है। तो हमने देखा कि दादी जो है समय के एक कदम आगे होती थी और क्लास कराती थी। हम मधुबन में भी आते थे, हमने देखा दादी का क्लास सुबह को चलता था, फिर मुरली होती थी। तो पहले क्लास फिर मुरली, बाद में चेंज हुआ मुरली फिर क्लास, 6:30 पहले मुरली होती थी, फिर चेंज हो गया 7 बजे मुरली, फिर दादी का क्लास धीरे धीरे शाम को, पहले 1 घंटा फिर आधा घंटा, ऐसे ऐसे सब चेंजेस होती गई। तो दादी जो है हमेशा हमको एक एक बात पर बताती थी कि अभी जो समय है, जैसे अभी का समय चल रहा है, अभी कौन सा समय चल रहा है, एवर रेडी रहने का, एवर रेडी अपनी स्थिति में। अभी समय है अपनी स्थिति को अच्छा बनाने का, अपनी स्थिति बनाने का, राइट। हम सब कहते हैं ब्राह्मण बाबा के बच्चे कि हम बाबा के बच्चे बने, हमको लॉटरी मिली, सबको मिली ना लॉटरी, ये लॉटरी है ना, कि आप घर बैठे सिर्फ बाबा को याद करो तो आप क्या बन जाए कि हाथ भरतू जाएंगे, ये शरीर छोड़ेंगे ना, आत्मा भरतू जाएंगी सिर्फ बाबा की याद से। सेवा करो तो बाबा ने कहा ये मिलेगा, ज्ञान दान करो, बाबा हर बात की बात हमको बताते क्या क्या होगा। तो अभी समय है हम ब्राह्मण बच्चों के लिए अपनी स्थिति बनाने का। अभी ये समय भी जो है स्थिति बनाने का, अभी जल्दी जल्दी रैप अप हो रहा है, माना नजदीक आ रहा है समय, वो समय चला जाएगा। तो जैसा समय है वैसा हमको कर लेना है, क्योंकि अगर हमने वो नहीं किया काम तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमको कोई भी बाबा के जो इशारे है उसको हल्का नहीं छोड़ना है। तो आज अमृत वेले जब मैं बाबा के सामने बैठी तो ऐसे आ रहा था जैसे समय हमारा हाथों से जैसे जा रहा है, नहीं समय जैसे चलता जा, मीनिंग इट्स गोइंग आउट ऑफ माई हैंड्स, मैं उसको पकड़ नहीं सकती, समय जा रहा है। तो ये समय जो है संगम का, हम बाबा के बच्चों के लिए ये डायमंड हीरे तुल्य समय है। सत्युग तो सोने की दुनिया होगी, सब कुछ गोल्डन, गोल्डन एज ही उसको कहते हैं, परंतु अभी है डायमंड एज। तो डायमंड एज में ये जो हीरे तुल्य समय है, ये समय में हमको अनुभव करने का समय है अति इंद्रिय सुख। सब खजाने जो बाबा ने दिए हैं, शांति का, प्रेम का, शक्ति का, ये सब खजानों का अनुभव करने का समय, ज्ञान का खजाना, गुण का खजाना, कितने खजाने बाबा ने दिए, समय का खजाना, संकल्प का खजाना, कितने खजाने हैं, और खुशी का खजाना। तो ये खजाना जमा करने का समय है। अगर एक एक सेकंड हम अच्छी तरह से राइट वे में उसको यूज नहीं करेंगे तो ये समय जो हाथ से निकल गया वो वापस नहीं आएगा, ठीक है ना, ये समय चला गया। इसलिए हर पल, हर संकल्प में, हर श्वास में हमको अच्छे से अच्छा सोचना है, और सोचना भी हमारा बहुत सिलेक्टिव है, ऐसे ही अपने मन को नहीं चलाना है। मन को बहुत शक्तिशाली, बहुत शुभ और बहुत शुद्ध संकल्पों का रिफाइन भोजन देना है। जितना हम इन बातों पर ध्यान देंगे उतना हमारा मन जो है वो पावरफुल बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, क्योंकि मन से बहुत काम करने हैं, करना है ना, अभी तो मन से ही करना है ना, जो भाग दौड़ करने की सेवा है अभी तो मोस्टली सारी दुनिया में स्टॉप है, भले जूम पर करते वो बोलने की हो गई, परंतु बाबा अभी किस चीज को वैल्यू दे रहे हैं, मनसा सेवा, ठीक है ना। वाचा सेवा जहाँ जरूरी है, मनसा सेवा, तो मनसा सेवा खुद को, हरेक को, अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाना है। तो आप सब यहाँ आए हो बट्टी में, आपका ये समय बहुत बहुत वैल्यूएबल समय है। इस समय में आपको और कोई विचार नहीं करने हैं, अपने लिए ही सोचना है। कई भाई बहन कहते हैं हमको ये बिजनेस का ख्याल है, बच्चों का ख्याल है, परिवार का, माना कितने सारे संकल्प चलते हैं। बाबा क्या कहता है कि इट इज वेस्ट, क्योंकि आपका जमा नहीं होता है। जमा कब होता है? जब हम एक बाबा को याद करते हो और ये काम अपने ऊपर हम करते हैं, अपनी स्थिति बनाने के लिए हम जब ये काम करते हैं। अगर मैंने अपनी स्थिति अभी नहीं बनाई तो कभी नहीं बनेगी। ऐसे मत समझो कि कोई समय आएगा मैं बना लूंगी, नहीं। जैसे स्कूल में हम पढ़ाई पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, दैट मीन्स मुझे एग्जाम जरूर देना है, क्योंकि मुझे ये क्लास पास करके दूसरे क्लास में ट्रांसफर होना है। हर एक स्टूडेंट को पता है एग्जाम तो देनी है, तो एग्जाम देने के लिए कितना अपने को तैयार करना पड़ता है। तो इसी तरह से हमारी पढ़ाई भी है और साथ साथ हमारी क्या है, पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी है, परंतु पढ़ाई के साथ साथ हमारा एग्जाम भी, पेपर हमारे सामने आता है, उसके लिए भी तैयार रखना है, अपने को तैयार रखना है। तो पढ़ाई पढ़ते हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठे हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, पता है कि इस पढ़ाई से हमारी बहुत कमाई होगी और हम कमाई कर रहे हैं, कर रहे हैं ना कमाई, पर साथ साथ ये भी मालूम है कि पढ़ाई के साथ साथ हमारी, बाबा कहते कमाई है, परंतु फिर भूलना नहीं है कौन है हमारे पीछे दुश्मन, बाबा कहते माया सामने खड़ी है। तो माया भी जो है वो टेस्ट पेपर लेके आएगी, इसलिए बाबा हमको अलर्ट करते हैं कहां ना कहां से आपका टेस्ट होगा, इसलिए हमको बहुत बहुत एक्टिव, अलर्ट और एक्यूरेट रहना है। तो एक एक बात को टिक करना है, टिक करना है कि ये बात मेरी आज हो गई, इस बात पर मैंने अटेंशन दिया। तो खुद का चार्ट खुद को रखना है, खुद को मार्क्स देना है। अगर हम ये करते रहेंगे बहुत मजा आएगा, तो ये समय का पूरा हम फायदा ले सकते हैं और हम एंजॉय करेंगे, एंजॉय करेंगे ना, भारी नहीं लगेगा। और पता है कि हम यहाँ आए हैं सब क्या करने, चुकतू करने, सब स्क्वेयर अप करने के लिए आए, सब हिसाब किताब चुकतू करने आएंगे। आज भी बाबा ने अच्छा लेसन पढ़ा है, तुम बच्चे सब क्या हो, मुर्दे हो, मुर्दे है कि जिंदा है। कितना बड़ा बाबा ने लेसन पढ़ाया आज। तो चलते फिरते मुर्दे, बाबा कहते घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते, घड़ी घड़ी किसी ने कुछ कहा, जैसे बताइए हमारी जो कर्म इंद्रिया है ना, यहाँ हम हॉल में चलो बैठ के सुनते अच्छा लगता है, यहाँ से बाहर गए किसी ने कुछ कहा, कोई पास्ट की बात याद आई या कुछ फ्यूचर का बात आई, डर लगा या थोड़ा स्ट्रेस हो गया, मन जो है चिंता में चला गया या फिकर आ गई, डर लग गया, कोई पास्ट की बात याद आ गई, किसी का फोन आ गया, ये सब बातें होती रहेगी, परंतु अंदर से अपनी स्थिति को इतना पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली स्थिति बना के रखना है। तो अभी ये समय चल रहा है, जमाना चल रहा है, अपनी स्थिति को पावरफुल, शक्तिशाली, एकदम ऊंची स्थिति बना के रखना है। कोई भी चीज, कोई भी टेस्ट पेपर हमारी स्थिति को डोलायमान चलायमान न करे, हमारी स्थिति फ्लक्चुएट न हो। ये है हमारी, क्या बोलते हैं, हाँ, ये एक चैलेंज है। हाँ, हम चैलेंज अपने को ही देते हैं, कुछ भी हो जाए मैं अपनी स्थिति को डोलायमान नहीं करूंगी, अपने से प्रॉमिस करना है। आए है ना, इतना टाइम निकाल के इतने दूर से भाई बहन आप सब आए हो, तो अपना पूरा समय सफल करना है। जितना सफल करेंगे उतनी शक्ति भरेगी, सफलता की भी शक्ति है, और जितनी शक्ति भरेगी उतना आपको खुशी होगी, अंदर से खुशी होगी, आप अपने से संतुष्ट रहेंगे तो खुशी होगी ना। मैं अपने पुरुषार्थ से खुश हूं, मैं अपने से संतुष्ट हूं, ये अभी समय है, ये जमाना है, तो हमको जमाने के साथ चलना है। बाबा तो इशारा देते हैं, ठीक है ना। तो दादी हम सबको यही लेसन सिखाती थी कि जैसा समय वैसा स्वरूप। तो बाबा की एक एक बात पर अटेंशन देना है, डोंट केयर नहीं करना है, सुना अनसुना नहीं करना है। हाँ, पूरा अच्छी तरह से सुन करके उस पर विचार करना है। और लास्ट में अभी समय है, जैसे हमने मनसा सेवा का बताया साथ साथ, कि अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाना है। तो साइलेंस पावर बढ़ाना ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अपने ऊपर हम ये काम करते रहेंगे तो नेचुरली अपने में साइलेंस पावर बढ़ती जाएगी, क्योंकि अंतर्मुखी होते जाएंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। ये कान खुले हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो, सिर्फ बोलने की बात नहीं, पर प्रैक्टिकल आप अनुभव करेंगे कि अंतर्मुखी रहेंगे तो सदा सुख का अनुभव करेंगे। तो अंतर्मुखता, हाँ, ये है हमारा फाउंडेशन, हाँ, साइलेंस पावर का। तो फिर आप जितना साइलेंस में रहेंगे सब प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे, किसी के भी प्रॉब्लम्स है, आपके सामने कोई भी आएगा, हाँ, उनको आप शांति का अनुभव करा सकेंगे। पर पहले हमारी वो स्थिति, साइलेंस की शक्ति की पावरफुल स्थिति अंदर हमेशा बनी रहे, अब ये समय है। इसलिए अगर मुझे साइलेंस में रहना है तो बोलना कम। वैसे तो हर कल्चर में कहा जाता है, गुजराती में कहते हैं न बोलवामा नौ गुण, माना अगर आप नहीं बोलेंगे तो नौ गुण, नौ माना नाइन। फिर दूसरा भी कहावत है, जो बोले तेना बोर वेचाए, गुजराती में कहते हैं जो अगर आप बोलेंगे तो आपकी बेरीज बोर आप बिक्री कर सकते हैं। माना हर उसका भी समय है, समय समय की बलिहारी। इसलिए बोल पर बहुत सारी बातें हर कल्चर में, हाँ, वेस्ट में भी कहते हैं यू वे योर वर्ड, एक एक शब्द को वजन करो, तोलो फिर बोलो। नहीं, गुजराती में भी कहते तोलो और बोलो। तो इंग्लिश में भी कहते वे, माना वजन करो अपने शब्द को। माना दूसरा ये भी कहते, अगर आपके शब्द एक बार मुख से निकल गए, जैसे ये तीर है, हाँ, फिर ये कमांड है तीर, माना शब्द निकल गए फिर वापस नहीं जा सकेंगे, तो अपने शब्द अपने को ही स्वॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए संभाल के बोलो, सोच के बोलो, समझ के बोलो, ये हमारी दादी भी हम सबको रिमाइंड कराती थी। तो समय भी अभी हमको यही रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति। पहला बारी में रिस्पॉन्ड नहीं किया ना, तीसरा बारी में बोलो ओम शांति। थैंक यू। मैं कौन, मेरा कौन।
थैंक यू संजय भाई, हमारे राजेश भाई को संकल्प आया कि दादी का ओम शांति का 3 बार, हमको तो ध्यान में नहीं था, इन्होंने ध्यान खिंचवाया। थैंक यू सभी को, तो बहुत बहुत थैंक्स है ना हंसा बहन और जेमनी बहन का। पावर हाउस तो बाबा है, लेकिन हमारी दादी पावर बैंक थी, है ना। जैसे वो पावर बैंक होता है, सब डिस्चार्ज मोबाइल को चार्ज करता रहता है, तो दादी जानकी जी ने, हमारी बहुत मीठी दादी ने, हम सब आत्मा रूपी बैटरीज को चार्ज करते रहे वो चलते फिरते। मुझे याद है, हम जयपुर में दादी थे, तो सुषमा बहन बड़े अवाक हो गए एकदम, 2 दिन के लिए दादी थे, तो गोविंद भाई बोले दादी को, पूरा जयपुर को जैसे दादी ने अपनी संकल्प शक्ति से बांधा हुआ है हम अनुभव कर रहे हैं। बोले हम तो चमत्कार देख रहे हैं, जैसे दादी ने पूरा जैसे कवर किया जयपुर, जैसे ने उनके जैसे कवर किया हुआ अपनी संकल्प शक्ति से उन्होंने। तो दादी में साइलेंस पावर तो था ही, दादी की तबीयत अभी खराब है, उनको बड़े किसी प्रोग्राम में जाना है, और 2 दिन साइलेंस में दादी रहते थे और अपनी जैसे प्रकृति जीत, दादी कैसे एक एक संकल्प से अपनी उस शक्ति से कैसे प्रकृति को हील करती थी, वो ऐसे हम सब ने वो देखा भी है, अनुभव किया है। अब हम दादी को आपके साथ, हंसा बहन और जेमनी बहन जी के साथ ही अनुभव करेंगे, तो हमारी रिक्वेस्ट है, मंजू बहन बड़े प्यार से याद करती हैं, तो जरूर आप उनकी उनके निमंत्रण को, हाँ कुछ और किसी से, किसी को कुछ मन में प्रश्न हो।
ओम शांति। जैसे आपको सुन रहे थे ऐसे ही लग रहा था कि दादी जी बोल रहे हैं। एक छोटा सा प्रश्न पूछने की हिम्मत कर रहा हूं कि हम जब भी दादी के बारे में सोचते हैं तो कभी कभी आंखें नम हो जाती हैं, और बाबा कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो हाँ, तो आप तो उनके अंग संग इतने वर्षों तक रहे हैं, तो आपने कैसे इसको पॉजिटिवली चैनलाइज किया, अगर आप थोड़ा सा शेयर कर सकें।
फर्स्ट थोड़े मंथ्स काफी कठिन रहा, क्योंकि मन को बहुत समझाना पड़ा, क्योंकि इतना मीन्स ओके, उम्र भी देखी, तबीयत भी देखी, मालूम है कि ये पेपर तो आएगा ही, लेकिन अभी ये पेपर आएगा रेडी नहीं थे। तो कई मास, जयंती बहन भी रही मेरे साथ 5 मंथ्स, लेकिन वो होते हुए भी 3-4 मंथ्स ऐसे ही लगा जैसे अंदर युद्ध चल रही थी, जैसे कि ड्रामा बहुत हमको कह रहा था कि पाठ पूरा हुआ उनका, आगे भी चल के उनको आगे कार्य करना है, उनको आगे का तैयारी करनी है नई दुनिया लाने के लिए, तो बाबा को उनकी बहुत जरूरत है। तो ड्रामा तो अपना पावर दिखा रहा था, तो और भी सब पूर्वज गए है, तो इनकी तो और आप सब जानते हैं दादी कितनी स्ट्रांग थी, तो सभी को इनकी जरूरत थी और बाबा को भी बहुत जरूरत था। तो ड्रामा कह रहा था कि पाठ पूरा हुआ, अभी उनको बुला लिया नहीं सके, फिर समय कह रहा था, अंदर ही अंदर युद्ध ये चल रही थी, ड्रामा, समय और मेरा ओन संकल्प जो चल रहा था। समय भी कह रहा था कि अभी समय पूरा हो रहा है, थोड़ा बहुत गया, थोड़ा रहा, तो समय कह रहा था कि उसका समय इतना ही था तो उसको जाना ही था, क्योंकि वहां भी सब प्रेपरेशंस करनी थी जहां भी दादी गई है। और मेरा ओन संकल्प कि अभी थोड़ा रहती तो कितना अच्छा रहता, 105 वर्ष तक रहती तो थोड़ा दादी का हम और संभाल सकते थे। तबीयत भी जानते हुए, उम्र भी जानते हुए, अंदर से जैसे हमारे स्वार्थ अनुसार 105 रहती, 110 रहती, तो ऐसे होता है। चाहे 110 साल भी रहती तो भी हम कहते 111 साल की रहती, तो ऐसे अंदर होता है ना, हम जैसे खींचते जाते हैं। लेकिन जितना हमने उनका किया ऐसे लगता है बहुत कम किया। सब कह रहे हैं कि आपने बहुत किया, आपने बहुत किया, लेकिन हमको अंदर फील हो रहा है कि ये भी कम हुआ जो हमने किया। और अच्छा कर सकते थे, अच्छा रख सकते थे, अच्छा चला सकते थे, लेकिन ड्रामा को मंजूर नहीं था।
आपने मजबूत कैसे बनाया?
तो फिर ये सब युद्ध होने के बाद फिर पट्टियां भी चली, उसमें हमको बड़ों ने बिजी कर दिया कि आपको भी एक ग्रुप करना है। तो उसमें काफी हमारा समय उसमें दिया हमने, जैसे हमारी टोटल टाइम एनर्जी, कौन सा गीत बजाएंगे, किन किन को बुलाएंगे, सारा स्टेज सजेगा, हम कैसे बाप दादा का आह्वान करें उसकी वीडियो बनाई, कौन से बड़े बड़े सीनियर्स को हम इनवाइट करेंगे उसका वीडियो, तो ऐसे जूम कॉल करेंगे। तो उसमें काफी बिजी रही तो हमको अभी अच्छा लगा। लेकिन उसमें हमको बहुत अच्छा लगा कि ये मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे कैपेसिटी नहीं है, मैंने कभी ये किया ही नहीं है, लेकिन दादी करवा रही है। कई बार दादी, आपने भी देखा होगा, दादी कहती थी कि हंसा आके बैठो, 5 मिनट कुछ सुनाओ। मैं अंदर से इतनी फियर थी मेरे अंदर कि मेरे को सभा के आके कुछ बोलने के लिए मैं नहीं बोल सकती हूँ, मेरे को नहीं आता, दादी मेरे को नहीं बुलाना, मैं स्टेज पर आऊंगी ही नहीं। तो कभी कभी हम छिप जाते थे क्योंकि हम नजर में नहीं बैठते थे दादी की, कि नजर में बैठेंगे ना मेरे को बुलाएंगे, आओ 5 मिनट बैठो कुछ सुना हो। तो है हमेशा दादी को पता था मेरे अंदर फियर, तो वो फियर भी जैसे धीरे धीरे निकलता गया उस समय। और भी मुन्नी बहनों को व्यस्त करती थी, जैसे कहीं कितनी सौगातें देनी थी, कोई भी पार्टी आती थी तो साथ में बिठाते थे कि आप मदद करो सौगात देने में, तो उसमें भी योग चलता था, उसमें भी बिठा देते थे। और मैं कहती थी मेरे को बोलने के लिए नहीं बोला, मेरे को नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 पेपर्स मेरे आगे, ये बहुत मैं फेस करना नहीं चाहती थी, एक तो बोलने का और दूसरा ये दादी का जाने का, ये 2 पेपर मेरे लिए बहुत कठिन था कि ये लाइफ में मेरे को फेस नहीं करना था। ये जो ये देखा, जो जिसमें फियर है वही सामने फर्स्ट आएगा, और सचमुच वो आया। लेकिन अभी भी बड़ों का बहुत सहयोग रहा है कि मेरे को अच्छा साथ दे रहे, सहयोग दे रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं सभी, क्योंकि मैं इस फील्ड में आई नहीं कभी हूँ, तो ऐसे एक्सपोज करना अपने आप को। क्योंकि जब भी मैं आती थी तो स्टेज पर दादी को लेके आती थी, दादी को लेके जाती थी, मैं अंदर से 3-4 मास तो मैं अमृत वेला भी करना नहीं चाहती थी, ना क्लास में जाना चाहती थी,
मैं अपने आप को विड्रॉ कर दिया था कि मेरे को नहीं जाना है। तो फिर कई मास के बाद फिर किसी ने मेरे को बोला, कोई सीनियर ने, कि आपको तो दादी का एग्जांपल फॉलो करना है, दादी कैसी थी। और मेरे को पता है कि दादी 2014 तक रोज कभी अमृत वेला मिस नहीं करती थी, जाती थी, अमृत वेला कराती थी। लेकिन 2014 से दादी जब गिर गई, उसकी तबीयत डाउन होती गई, लेकिन उसके पहले तो हमेशा अमृत वेला कराने जाना, मुरली क्लास में जाना। और मैं नहीं जाऊं, मैं इतने साल उनके साथ रही हूं, साथी बने, तो मैंने क्या सीखा। तो फिर मैंने क्लास में जाना शुरू किया, क्लास में जाना शुरू किया तो वही फिर से रोना आए, मैं अकेली जा रही हूँ, मैं अकेली आ रही हूँ क्लास से। और फिर कोई गीत बजता था तो वो भी वहां गंगा जमुना बह रहा था। तो मैं अब क्या, बहुत अपने आप को समझाया, योग किया, फिर घर में ही बैठ के, शक्ति भवन में बैठ के खूब योग किया कि आपको हम बाबा, आपको मेरे को दादी, आपको मेरे को मदद करना है इस पेपर पास करने में। तो ऐसे करके करके सेवा में भी थोड़ा बहुत व्यस्त, और वहां भी मैं फिर ग्रुप्स बुलाती थी कि छोटी छोटी बहनें जो मधुबन में समर्पित है उनको बुलाती थी। तो उन्हों के साथ बुलाना, मैंने बोला मेरी प्रैक्टिस हो जाएंगी तो बहुत अच्छा रहता था। हम योग भी, योग पट्टी रखते थे सब कुछ। तो ऐसे ऐसे मेरा माइंड भी डाइवर्ट होता गया, और उन्हों को भी अच्छा लगता था, जो भी ग्रुप्स आते थे पट्टी करने के लिए, बहनों का भी ग्रुप्स आता था, तो उसमें भी माइंड डाइवर्शन होता गया। अपने आप को स्ट्रांग बनाते, 100% स्ट्रांग नहीं हो लेकिन थोड़ा बहुत तो स्ट्रांग बनाया।
बहुत बिजी हो गई, शक्ति स्तंभ में भी बिजी हो गई।
दूसरा के शक्ति स्तंभ, इसमें भी कभी हमने बिल्डिंग वर्क्स में कभी 1% भी हमको नहीं कुछ आता। हमको घड़ी घड़ी हमको ही पूछते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई बड़ा है नहीं। तो ये अच्छा मीन्स एक, वो लोग सैंपल्स दिखाते हैं, करते हैं, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा है, तो कैसे करना है, वर्क को पुश करना है। क्योंकि कितने मंथ्स डिले हुआ, हम वहां जाते थे तो वो लोग पटाके हमको भेज देते थे और हमारा काम होता ही नहीं। हमको बोल देते, देखो आपका ही काम मशीन में है, आपका ही हो रहा है, तो हम मान जाते थे। लेकिन फिर बाद में वो देखा कि ये तो पटाके भेज रहे हैं हमको। तो इससे भी हम बहुत सीखे कि किस कैसे उनको पुश करके काम भी कराना है, सब कुछ ध्यान अटेंशन से देखना है, सब ठीक हो रहा है। जैसे हमने उनको ड्राइंग्स दिया, ऐसे ही ड्राइंग्स से बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो माना कि दादी के जाने के बाद वास्ट डिफरेंस, जो हम दादी के साथ रह के सेवा करते थे, अभी जो सेवा कर रहे, टोटली डिफरेंस ऑफ डे एंड नाइट, रात दिन का फर्क है। लेकिन उसमें भी मैं फील करती हूँ कि दादी मेरे पीछे है, दादी मेरे को मदद कर रही है, और बाबा भी बैठा है। दादी जहाँ बैठती थी शक्ति भवन में, वहाँ ही दादी का चित्र भी रखा है, और जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ बाबा का पिक्चर रखा है। तो कोई भी लोग मेरे को मिलने के लिए आते हैं तो मैं यही फील करती हूँ कि बाबा मेरे को कह रहा है, अंदर से फीलिंग आती है कि बच्चे मैं बैठा हूँ, फिक्र मत करो। और दादी भी बैठी है तो मेरे को जैसे खूब बल दे रही है कि मैं तेरे साथ हूँ। और दादी ने बोला था कि ये यहाँ ही आपको रहना है, क्योंकि हमने जो बोला कि दादी आप नहीं होगा कि तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मैं दूसरी फ्लाइट में ही वापस लंदन चली जाऊंगी। तो दादी ने कहा नहीं, ये एक मंदिर है, आपको यहाँ ही रहना है, आपको यहाँ ही रहना है, आपको सबको प्यार और पालना देना है, और मेरा साक्षात स्वरूप बन के रहना है। यहाँ बहुत लोग आएंगे, तो मैं कहती थी कि मैं क्या करूंगी, मेरे को तो कुछ आता नहीं है। दादी कहती थी नहीं, आपको प्यार और पालना सभी को देना है। तो शक्ति भवन का दरवाजा खुला है, आप जब नीचे आओ अवश्य दादी से अव्यक्त दृष्टि लेके के जाना। ओम शांति।
बोल रही या अनदर क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आंसर? You would like to answer another question? He has another question. Oh yeah, okay. Jaimini.
Jaimini, when what was the mantra when in Adi, mana Adi mein jab dadi videshon ki sevaon mein gayi, tab unko language bhi nahi aa raha tha, unko wahan ki currency ka bhi kuch pata nahi tha. To aaj hum dekhte hain pura Europe mein baba ka jhanda phail raha hai. To wo kya mantra tha? कहते हैं वहां पे, मैं भी लंदन आया हूं, आपको मालूम है कि यहां पर ओपनली किसको बता नहीं सकते हो, बहुत ही कंजर्वेटिव रहना है। तो ऐसा क्या था, दादी ने ऐसा क्या किया कि इतना फैलावा हो गया?
क्या है कि आप सबको तो मालूम है दादी का कोड वर्ड है बाबा, बाबा बाबा बाबा, ये दादी का कोड वर्ड है। दादी ने जो अनुभव किया, एक्चुअली आज मैं डीपली यही विचार कर रही थी दोपहर में कि दादी ने रियली ज्ञान को हप कर लिया। कहते ना चिड़िया ने सागर को हप कर लिया। तो कई बार दादी हम लोगों को कहती थी, छोटे ग्रुप में बैठते थे, बड़े क्लास में भी, कि ये जो गायन है ना, चिड़िया ने सागर को हप कर दिया। तो दादी कहती है वो मेरा अनुभव है, पूरा ज्ञान जो है रियली बहुत गहराई में गई दादी, और ज्ञान को अच्छी तरह से कूट कूट के अपने अंदर भरा। तो दादी के अंदर एक ही बात थी जो आपका आंसर ये है एक शब्द में, कि बाबा ने जो, मैंने जो बाबा से पाया है, मैंने जो बाबा से अनुभव किया है, वो मुझे सारी दुनिया में बाबा को दिखाना है, सबको बाबा दिखाना है। जैसे दादी का ये साक्षात्कार हुआ था यहाँ पर जब थे ब्रिज कोठी में, आपको मालूम होगा दा ये जीवन कहानी में है कि बाबा खड़े हैं और दादी जो हैं एकदम जैसे बाबा को देख के ऐसे देखा जैसे कृष्ण है, छोटा सा कृष्ण, और बाबा को ऐसे हाथ में उठा लिया, इतना लंबा बाबा नहीं लंबा, और हाथ में उठा लिया और पूरी दुनिया में चक्कर लगाया बाबा को, ऐसे दादी ने विजन देखा। तो ये विजन था दादी का, ये विजन दादी ने पूरा पूरा किया। तो एक ही बाबा, दूसरा ना कोई, दिल में बस बाबा ने सब कुछ सिखाया। दादी को ए बी सी कुछ नहीं आता था, सब सिखाया बाबा ने। ईमेल भी पढ़ती थी, ये इतने सारे ईमेल पढ़ती थी, उत्तर देती थी जयंती बहन को, सब पढ़ के यहाँ रख देती थी और ऐसे बैठ के ओरली आंसर देती थी। ये तो बहुत बड़ी लंबी कहानी है कैसे दादी ने पूरा हैंडल किया, और विदेशियों को हैंडल करना कोई छोटी बात नहीं है। आपने भी देखा ना।
ओम शांति। जब क्योंकि यहाँ जब साकार बाबा के समय जब दादी थी, तब जो भी विदेश से पत्र आते थे तो दादी को दिया जाता था, लेकिन दादी को उस समय कुछ संकल्प मात्र भी नहीं था कि मैं कभी विदेश जाऊंगी, ना कभी स्वप्न में भी सोचा था। लेकिन बाबा ने जब फर्स्ट डेलीगेशन 1971 में जब आए, तब जगदीश भाई ये सब आए थे, जगदीश भाई, रमेश भाई, उषा रतन में ये सब आए थे। उसके बाद जब वो लोग वापस गए, तब उन्होंने जाके सब समाचार दिया, तब दीदी दादी ने सोचा कि दादी को भेजना चाहिए, जानकी दादी को, और बाबा से भी कहलवाया, जो बाबा ने दादी को बुला के कहा कि बच्ची आपको विदेश जाना है, लंदन जाना है, तो उस समय दादी ने कहा कि मैं वहां जाके क्या करूंगी, मेरे को भाषा भी नहीं आती है। तो उस समय बाबा ने कहा कि आपको वहां जाके मधुबन का मॉडल बनाना है। तो जब दादी 1974 में आई, कोई भाषा नहीं जानती थी, तो उस समय डॉक्टर निर्मला भी थे, जयंती बहन थे, रतन मोहिनी दादी चली गई थी उस समय, लेकिन जब दादी आई 1974 में तब दो चार बहनें थी। तो उस समय जब ये लोग बाहर जाते थे भाषण करने के लिए या कोशिश के लिए, फिर लोग आते थे कोशिश करने के लिए, तो उस समय दादी क्या करती थी, आप बोलते हैं ना वृद्धि कैसे हुई, वो पूरा टाइम बैठ के योग लगाते थे वहां पर। उनका वही था कि पूरा फोकस उनका योग के ऊपर ही था, क्योंकि भाषा तो आती नहीं थी, तो कोई भी आता था वहां पर कोशिश करने के लिए तो दादी उस समय वहां बैठ जाती थी, वाइब्रेशंस देती थी। वो वाइब्रेशंस फैलाते फैलाते कैसे दादी ऐसे फैलाती थी कि बाहर लोग जाते भी वो खींच होती थी उनको कि जहां रहते थे वहां अंदर आए। तो ये एक सीड था जो दादी कैसे वहां बैठ के खूब तपस्या किया, योग तपस्या किया, वृद्धि उस आधार से हुई। दादी को भाषा नहीं आते, प्यार देना तो आता है ना, पालना देना तो आता है ना, प्यार देती थी, पालना देती, जो भी आते थे कोर्स करने के लिए, और जो भी बाबा के बच्चे बनते जाते थे तो उनको बहुत पालना दी, खूब पालना दी। आज आप देख रहे हो केन भाई, चाली भाई, डिनीज बहन, खूब दादी ने पालना दी उनको। ऐसे तो वृद्धि हुई, सिर्फ शब्दों से वृद्धि नहीं होती है, लेकिन वाइब्रेशंस, प्यार से, स्नेह से, कैसे उनको अपना बना के रखने से, खिलाने से, पिलाने से। दादी उन दिनों में तो 5 साल खाना खुद बना के खिलाती थी। दादी बहनों को बोलते थे कि आप सेवा पर जाओ, मैं यहाँ बैठी हूँ। उनको खराब लगता था कि दादी कैसे आप हम सभी के लिए बैठ के खाना बनाएंगे। दादी कहती थी हाँ मैं बैठ के खाना। 5 साल दादी ने वहां बैठ के खाना बनाया, बहनें सेवा पर जाती थी। और यहाँ तक जब डॉक्टर निर्मला बीमार हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो जयंती बहन ने दादी को रास्ता दिखाया। दादी से सेंटर से बाहर निकलो, दाईं तरफ जाओ, सीधा सीधा जाएंगे ना वहाँ, ये नंबर की बस पकड़ना। तो और वो बोलना हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल पर उतार। तो दादी निशाने से समझ जाती थी वो नंबर, वो सीधा जाती थी, उस नंबर बस पकड़ती थी और हॉस्पिटल उतर के खाना खुद बना के डॉक्टर निर्मला को लेके दे के जाती थी। दादी ने खुद दिए सेवा की, बसों में जाना, ट्रेनों में जाना।
वैसे हंसा बहन कहती है मुझे बोलना नहीं आती है, पर सबसे अच्छा ये क्लास से बढ़िया है, क्योंकि क्लास है ना, अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है, और आपके अनुभव जो दिल से निकलती है और ये सबके दिलों तक ये बातें पहुंचती है, एंड ये करना इजी हो जाता है जब व्यक्ति अपने अनुभव सुनाता है, अनुभव से ज्ञान सुनाते हैं तो वो दिल को छू लेता है। तो इन दोनों के अंदर सागर है, दादी के साथ का अनुभव, और आप सभी जेमिनी बहन को भी जानते हैं, आप यूके लंदन में रहते हैं, अभी कुछ दिनों के लिए आप आए थे, और आप वहाँ बीके पब्लिकेशंस वगैरह आप सब संभालते हैं, और इनके बहुत सारे कारोबार हैं, और आप भी 40 साल से इस ईश्वरीय मार्ग में चल रहे हैं और आज हम दोनों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। धन्यवाद शब्द छोटा, क्योंकि बहुत अच्छी चीज दी ना, हाँ बहुत बढ़िया चीज आप सबको खिलाया। थैंक यू सो मच।